نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हम सब को इंसान बनाया। चंद सेकंड के लिए सोचिए, अगर मैं इंसान ना होती तो क्या होती? क्या हम में से किसी का कोई इख्तियार है अपने इंसान होने पे? किसी नाली में रिंगता हुआ कीड़ा, मेंढक, छिपकली, बिज्जू, सांप, एक से एक बदतर चीज सोच लीजिए जिसके बारे में इंसान का तसव्वुर भी नहीं जाता, उस सारे को जहन में लाकर सब एक दिल की पुकार के साथ बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम अल्लाह की इस मखलूक यानी इंसान होने का हक रखते हैं तो ये भी अल्लाह ताला का एक एहसान है, हमारे अंदर इसकी भी ताकत नहीं थी। चलिए दूसरा एहसान, सही सालम बनाया। क्या ये मुमकिन नहीं था कि हमारी आंखें ना होती, कान ना होते, कान होते समात ना होती, आंख अपनी जगह बिल्कुल ठीक होती लेकिन बसारत ना होती? क्या आज तक हमने अपने इर्द गिर्द कोई ब्लाइंड, कोई डेफ, कोई डम नहीं देखा? फिर कहिए एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह निकलना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम अल्लाह की दी हुई नेमतों का दिल की गहराई से शुक्र अदा करेंगे उतनी नेमतें और मिलेंगी। अल्लाह सुब्हानहु तआला सूरत इब्राहिम में क्या फरमाते हैं, वइस्तअज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। और जब तुम्हारे रब ने पुकारा कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमत को बढ़ा दूंगा। इंसान जिस नेमत की भी कदरदानी करता है अल्लाह ताला उसको बढ़ा देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान भी ऐसे ही करते हैं। आपके पास कोई चीज आती है, आपकी हमसाई आपको कोई खाना बनाकर भेजती है, आप उसको खाते हैं, फिर बड़े शौक से खाते हैं, फिर आप बाद में उनको कहते हैं कि बहुत ही मज़े की थी, मज़ा आ गया, शुक्रिया, जज़ाकिल्ला। क्या होगा भला आपको पता? अगली दफ़ा जब वही चीज़ बनाएगी ना, पहले से आपका हिस्सा डाल लेगी। अच्छा, आपको अच्छी लगी थी, आपको पसंद आई थी, मैं आपके लिए भी भेजती हूँ। क्या हुआ? आपने उनकी नेमत की, उनके उस तोहफे की, उनके उस खाने की दिल से कदर की तो उन्होंने मुस्तकिल आपका हिस्सा डाल दिया। इसके बरक्स कोई आपको खाना भेजे और आप कहें हम तो खाते ही नहीं, मेरे बच्चे तो किसी के हाथ का नहीं खाते, और एक आध दिन बाद वो देखे तो आपने वो खाना कहीं बाहर फेंक दिया या उसके हाथ से लेके मासी को दिया जो तुम खा लो, सच बताइए क्या वो अगली दफ़ा आपको वो खाना भेजेगी? बस ये है वइस्तअज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। इस जज्बे के तहत यहाँ बैठकर सोचिए, इंसान हूँ, सही सालम हूँ, तीसरी बात मुसलमान हूँ। पैदा तो हर बच्चा ही मुसलमान होता है, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरो, फितरत पे अलस्तु बिरब्बिकुम का अहद किया हुआ बच्चा, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में बोले थे इन्नी अब्दुल्लाह। आज भी अगर कोई बच्चा बोलेगा तो यही कहेगा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, लेकिन बाद में हिंदू के घर में पैदा हुआ बच्चा खुद को हिंदू समझने लगता है, ईसाई के बच्चे को ईसाईयत अच्छी लगती है, इसी तरह मुसलमान के बच्चे को मुसलमान मजहब अच्छा लगता है। क्या ये मुमकिन नहीं था? हम किसी और धर्म में होते, हम किसी और मजहब के पैरोकार होते? सोचिए जरा, आप सोचिए, ये आपके सोचने का वक्त है। अल्लाह सुबहान तला ने हमें ऐसा दीन देकर भेजा कि जिसकी तलब आज भी करोड़ों को है लेकिन हम उन तक नहीं पहुंचे। फितरत की पुकार इस्लाम है। आज भी उन लोगों को देखिए जो मुसलमान होते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो वो बड़ी मुश्किलों से गुजर कर आते हैं, धक्के खाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो आपने पढ़ा भी है, हजरत बिलाल की मुश्किलें देख लीजिए, कैसे कोड़ों पे लिटाए जाते थे, कैसे घर छोड़ छोड़ कर लोगों ने हिजरतें की। मैंने आपने इस्लाम की ऐसी कोई कीमत दी? और मैं अपने इल्म के लिए पूछ रही हूँ, आप में से कोई रिवर्ड सिस्टर है यानी नौ मुस्लिम जिसके माँ बाप किसी और दीन पे थे और उसने इस्लाम को समझ के पढ़ा? तो वो भी काबिले मुबारक है। क्या हमारे ईमान में इतनी गर्मी है कि हम समझ कर इस्लाम कबूल करते हैं? क्या हम इस्लाम का इतना इल्म ले चुके हैं? क्या अल्लाह सुबहान ताला की नेमतों के एहसास ने हमें इतना बोझिल कर दिया? नहीं तो फिर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतिल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतिल कुरान। अगली नेमत मुसलमान भी बनाया अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र है। तकरीबन 2 बिलियन के करीब लोग आज खुद को मुसलमान कहते हैं। अगर आप मज़हब के खानों में नाम देखिए तो 2 बिलियन लोग मजहबन या कानूनन मुसलमान हैं, लेकिन नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान भी नहीं पढ़ते, या नमाज कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह की बात नहीं मानते। जो नमाज तो पढ़ते हैं या का नाबुदु या का नस्ताइन कहते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे नहीं बनते, अब नहीं है आबिद हैं। बस नमाज रोज़ा कर लो लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं करनी। ये नहीं है कि चलो जिसको माना है अब उसकी भी मानो। जब जिंदगी के अंदर नज़र डालो तो पूरा लाइफस्टाइल अपनी मर्जी का, शादी ब्याह खानदान के तौर तरीके की, मरने की रस्में बिरादरी की। जब बात करो कहते हैं क्या करें, दुनिया में भी रहना है, लोग क्या कहेंगे। अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने आपको मुझे इस चक्कर से भी निकाल दिया। अल्लाह की मर्जी का बनने की कोशिश तो करते हैं। आज आप सबका इधर इतनी मोहब्बत से आना इस बात की दलील है कि आप बेहतरीन लोगों में से हैं। जो मैं नहीं कह रही आपको, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ देता है। तो आज मैं और आप सब यहाँ दीन की समझ के लिए आए हैं, ऐसे ही है, कोई और मकसद तो नहीं हमारे आपके आने का। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबका बुलाना, हमारा आना और आप सबका ये सब करना, अल्लाह इसको कबूल करे। अगर हम वाकई इसको सिर्फ अल्लाह के लिए कर गए तो इसके असरात आप बाद में भी देखेंगे। आज हम जिस मौजू पे थोड़ी सी बात करेंगे वो क्या है कि पेरेंट्स एंड टीचर इफेक्ट, बच्चे की शख्सियत पर वालदैन और उस्ताद का असर। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से हर एक औलाद तो हैं, ज़रूरी नहीं कि आप में से हर एक माँ भी हो, कुछ अनमैरिड बच्चियाँ होंगी, कुछ की शादियाँ भी हुई लेकिन बच्चे नहीं हुए, और आप में से हर एक का कोई ना कोई उस्ताद ज़रूर होगा, है ना? चाहे किसी ने आपको अलिफ बे ते पढ़ाई, किसी ने ए बी सी डी पढ़ाई, किसी ने 1 2 3 पढ़ाई, या फिर किसी ने कुरान पढ़ाया। कहाँ हम दुनिया के कोने में मानसहरा में आज बैठे हुए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप सब आए कहाँ से हैं। आप में से कितने लोग नूरुल कुरान लफ्ज़ से वाकिफ हैं? हाथ खड़ा कीजिए जिस बात का आपको जवाब आता हो या यस हो। फिर आप कैसे आ गए इधर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो हम लोग हर साल जब भी कहीं ट्रिप होता है किसी मुल्क का तो उसको एक सीरीज का नाम दे देते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि उसमें लेक्चर रिपीट नहीं होता, और आज आपका कुछ मिस नहीं हुआ क्योंकि हर टॉपिक अपनी जगह एक पूरा टॉपिक होता है। तो पहले लेक्चर अगर आपने सुनने हैं तो यूट्यूब पे नूरुल कुरान टीवी, नूर के लफ्ज़ में हम यू डालते हैं, डबल ओ नहीं डालते, NURULQURAN, 3 दफ़ा यू है, और यू का मतलब क्या होता है सबको आती है, इंग्लिश आती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए, आपकी वेबसाइट है वो, आपका चैनल है। इसी तरह फेसबुक अगर आप उसको यूज करते हैं तो माई नूरुल कुरान पे आपको प्लेलिस्ट में इसी नाम से ये सारे लेक्चर्स मिलेंगे। दूसरी बात जो मैं हर लेक्चर से शुरू में करती हूँ, क्योंकि हर रोज नए लोग मेरे सामने होते हैं आप जैसे अक्सर, के इस सीरीज का एक थीम है और वो क्या है, ज़हर अल फसादु फिल बर्री वल बहर, खुश्की और तरी में फसाद फैल गया। ये क्या है? फसाद की बदतरीन सूरत यह है कि मखलूक खालिक से कट गई, बंदे रब के साथ उस तरह नहीं जुड़े जैसा कि जुड़ने का हक था। आज एक बच्चा भी अपनी माँ के पीछे पीछे फिरता है, लेकिन बंदा अपने रब के पीछे नहीं फिरता, सारा दिन मारा मारा फिरता है रिस्क की तलाश में, लेकिन रब के सामने 2 रकत नमाज पढ़ के झुक कर उससे दुआ मांगने का मौका ही नहीं मिलता इल्ला माशाल्लाह। तो आज हम देखते हैं कि इंसान इतना मसरूफ हो गया है, कहीं कमाने के नाम पे, कहीं औरतें घर सजाने और संवारने के नाम पे, और कहीं हमारे बच्चे पढ़ने पढ़ाने के नाम पे, कि उनके पास अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं है। तो आज उसमें से जो टॉपिक हमारे पास, बच्चे की शख्सियत पर वालदैन और उस्ताद का असर, पेरेंट्स एंड टीचर इन्फ्लुएंस एक बच्चे की पर्सनैलिटी, थोड़ी सी बात इस पर करना चाहूँगी। और हम सब का कोई ना कोई माँ बाप है, हम सब जानते हैं, ये तुम कह सकते हैं हमारी औलाद नहीं है या अभी नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे माँ बाप नहीं है या हमारी माँ नहीं है, थी है नहीं थी, مثال اگر چلی گئیں، کیا آپ کی موجودہ شخصیت پر آپ کے ماں باپ کا کچھ اثر پڑا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ کا کوئی اثر ڈالا؟ ذرا سا چند سیکنڈ سوچئے، آپ کے اندر اپنی ماں کی کون سی عادت ہے؟ ایسی سوچئے، بس کھیل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلے اگلا سوال سوچئے، جب آپ چھوٹی تھیں اور آپ اپنی ماں کے گھر میں تھیں تو آپ کو اپنی امی کی کون سی بات اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن آج وہی آپ میں بھی ہے. اگلا سوال، جو گلہ آپ کو اپنی ماں سے تھا، کیا آج آپ کی جوان بیٹی کو بھی آپ سے وہی گلہ نہیں ہے؟ ہے نا، ہم سب جانتے ہیں ماں باپ کا اثر بچے پر ناگزیر ہے. وی کینٹ ایوائڈ دس. بچہ ماں باپ کی کاربن کاپی ہوتا. دیکھیے، جس جسم کے اندر بچہ 9 مہینے سے زائد، بلے جس سینے سے 2 سال تک بچہ دودھ بھی ہے، اور جس باپ کی کمائی سے بچہ بڑا ہونے بالے ہونے تک فائدہ لیتا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر نہ ہو؟ تو پہلی بات سمجھ لیجئے، جس طرح آپ کے اوپر اپنی ماں، اپنے ارد گرد آپ کے ماحول کا اثر ہے، بالکل اسی طرح سے آپ کے بچے آج جو موجود ہیں یا آپ کے پوتے نواسے، ان پر بھی آپ کا اثر ہوگا. ہم جیسی نسلیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس پر احسانات کر کے اللہ نے اپنی ربوبیت کو منوایا ہے. رب العالمین ہے، ان گنت نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ یہ نعمتوں والی سورت ہے، کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے. یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے آگے دنیا کی تمام نعمتیں ہیج ہو جاتی ہیں ایک لمحے کے لیے. کیونکہ ساری دنیا کا مال دے دیجئے، اسباب دے دیجئے، ڈاکٹرز کو دکھا لیجئے، باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، اگر رب نے آپ کو اولاد کا رزق نہیں دینا تو نہیں ملنا. کروڑ پتی بیٹھے ہوتے ہیں، لاکھوں کے ٹیسٹ، انجیکشنز، باہر کے ملک، نہیں ملنا. اور دوسری طرف غریب بیچارے چاہتے ہی نہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہر سال ایک نیا بچہ آ جاتا ہے. یہ اولاد کا خزانہ اللہ نے 100% اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. اگر کسی ارب پتی بندے کو پوچھئے کہ تم کس قیمت پہ اولاد حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میرا اہل اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد آفر کر دے گا. لیکن جب وہی بچہ مل جاتا ہے، جب وہی اولاد آپ کی گود میں ڈال دی جاتی ہے، تو عموماً کچھ لوگوں کا ہار، سورۃ الاعراف کے بالکل آخر کی ایک آیت میں نے لاسٹ ویک پڑھائی، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کی مثال دے کر بتایا، ایک سمبالیکلی بتایا، کہ کچھ لوگ جب اولاد نہیں ہوتی تو اولاد مانگتے، اور جب اللہ ان کو اپنی رحمت سے صالح اولاد دے دیتا ہے صحیح سلامت، تو ان کو دوسروں کے نام پہ گنڈنے لگتے ہیں، فلاں کی دیتا، پیراں دیتا، بابا جی دی دین، یہ وہ، یا پھر ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے. تو یہ بات تو ایک الگ ہے. سوال لکھتے ہیں اپنے آپ سے، خود سے پوچھتے ہیں، کیا میرے پاس جو اولاد ہے میں نے اس کو نعمت سمجھا اور اس کی قدر کی؟ الحمدللہ. ہم اولاد کے معاملے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے. ہم سمجھتے ہیں وی اون دم، وہ ہماری ملکیت ہے. نہیں، لکھئے یا سنیے، اولاد ہماری ملک نہیں ہے، وہ ایک امانت ہے. کیونکہ جب ہم اپنے بچے کو اپنی ایک کہہ لیجئے کہ اپنا اثاثہ سمجھ لیتے ہیں نا، تو ہمارا انداز بالکل فرق ہوتا ہے. پھر ہمیں یہ فکر ہوتی ہے ہمارے مرنے کے بعد جو ہماری کروڑوں کی جائیداد لے لے، ہمارے پلاٹ، زمینیں، ہمارے گھر، ہمارا سونا چاندی، ہے جی کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. لیکن حقیقت یہ کہ اولاد اللہ کی ایک امانت ہے، ایک نعمت ہے. اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم ضرور ہی نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے. اور امانت کیسے ہے؟ تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا. حدیث کچھ اس طرح سے آتی ہے، کلکم راعیون، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، گڈریا، بکریاں چرانے والا. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو قیامت کے دن اس اولاد کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا، اس امانت میں تم نے خیانت تو نہیں کی، کیا حقیقت میں تم نے اس کو واقعی صحیح طرح سے پروان چڑھایا. دیکھیے قرآن کئی جگہ کہتا ہے، مثلا سورہ آل عمران کی آیت 13 ہے غالباً، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، مزین کر دیا انسان کے لیے بیوی اور بچوں کی محبت کو. اور آگے بھی ایک لسٹ ہے، لیکن सिर्फ अगर इतने पे फोकस करें। इसी तरह सूरत कहफ में हर जुमे आप पढ़ते होंगे अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और बेटे दुनिया की जीनत है, लेकिन वल बाकियातु सालिहात, बाकी रहने वाली तो ये चीजें जिसकी कदर की जाए। यानी अपने माल और अपनी औलाद को सिर्फ दुनिया में इन्वेस्ट ना करो, उनको आखरत के लिए भी खपा दो। तो सवाल अपने जहन में अपना एक और लिखते हैं, क्या मैं सिर्फ अपने बच्चों की दुनिया बनाने की फिक्र में हूँ या उनकी आखरत की भी फिक्र है। याद रखिए अल्लाह के नबी की वो हदीस सभी को आती होगी कि इज़ा मात अल इंसान इन कते अमलुहु, मुस्लिम की रिवायत है ये, जब इंसान मर जाता है तो उसका नाम अमल मुनक़ते हो जाता है, जैसे टाइम खत्म होने पे पेपर छीन लिया जाता है। इल्ला मिन सलास, हाँ तीन चीजों का अजर, अच्छी सूरत में भी और बुरी में भी, उसके बाद जारी रहता है। और हदीस में तीन अच्छी चीजें बताई, पहली चीज वलदुन सालेहुन, नेक औलाद, और जहर की औलाद नेक है तो उसकी अच्छी तरबियत की होगी ना, मेहनत की होगी। आप में से माशाल्लाह जिनके बच्चे हुफाज हैं, हाफिजात हैं, बेटियां ऐसी तो नहीं बन गई ना, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे अदाब सिखाना बच्चे को माँ बाप का एक ऐसा तोहफा है कि जिसका बच्चा सारी जिंदगी हक अदा नहीं कर सकता। आप बच्चों को मैचिंग जोड़े लेकर दें ना दें, उनको मोटी जैकेट्स पहनाए ना पहनाए, पल जाएंगे। आप उनको मैकडोनल्ड के बर्गर खिलाएं ना खिलाएं, पल जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को दुनिया और आखरत की अच्छी तालीम ना दी तो पकड़े जाएंगे, ये सवाल होगा। दूसरी चीज इल्मुन युनतफाउ बादहु, वो इल्म जिससे उसके बाद नफा हासिल किया जाए। और तीसरी चीज सदकतुन जारियतुन, सदका जारी, जो उसके बाद तक नेकियां देता रहा। अगर हम अपने बच्चों को इल्म देकर एक सदका जारिया बना दे तो ये तीनों चीजें आपकी औलाद की सूरत में जमा हो जाती। हम सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा पैगाम है इसमें, हम अपनी औलादों को जो बनाना चाहते हैं वो हम खुद बन जाए, और जो हम अपनी औलाद में नहीं देखना चाहते वो अपने अंदर से निकालिए। आज का टॉपिक तरबियत पे नहीं है, इफेक्ट्स पे, कि एक बच्चा कैसे माँ बाप के असरात लेता है। आप देखिए कि आज साइंस ने भी ये बता दिया कि माँ के पेट में बच्चे को सेंस होती है, इवन बच्चा ख्वाब भी देखता है। बच्चे को माँ का लफ्ज कैसे पता चलता है, रोता बच्चा माँ के हाथों में आके चुप क्यों हो जाता है, उसको पता है कि ये मेरी माँ। लेकिन बास दफा होता क्या है कि माँ बाप की गैर मुनासिब हरकत, आप कह सकते हैं सोचे, आदत, रहन सहन, लड़ाई झगड़ा, घर का माहौल टेंशन में रखना, ये सब बच्चे की शख्सियत को मसख कर देते। आज मैं और आप अपने आप को पीछे तो नहीं ले जा सकते, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि आपके अपने शौहर के साथ ताल्लुकात या आपके घर का माहौल आपके बच्चों की शख्सियत को या तो मसख कर देगा या उसके लिए। तो हम अपने बच्चों के लिए सोचे, अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मेरे घर का माहौल लड़ाई झगड़े वाला तो नहीं है? दूसरा सवाल, क्या मैं गीबत तो नहीं करती? क्या लड़ाई बुझाई का माहौल तो नहीं है घर का? जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तजस्सुस, जो देखो दादी क्या कर रही हैं, ये जरा चच्ची किससे बातें कर रही हैं, फुफो क्या कर रही हैं। अगर आप अपने बच्चों से ये सारे काम कराएंगे ना, जासूस बनेंगे, फिर उनको इंटेलिजेंस में डाल दीजिएगा बड़े होके, या पुलिस में डाल दीजिएगा। बच्चे कनिंग हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा उस वक्त कह सकते हैं आप के वक्त से बड़े हो जाते हैं, बाबों वाली बातें करने लगते हैं जहाँ घर का माहौल ऐसा होता है। मैं एक वाकया पढ़ रही थी इंग्लिश का, किसी साइकाट्रिस्ट ने बताया हुआ था कि एक दफ़ा मेरे पास एक कपल आया और अपने एक बच्चे की तबीयत की सख्ती और उसके चीखने और चिल्लाने की शिकायत कर रहा था, ये ऐसा करता वो वैसा करता, ये करता वो करता है, तो हमें कुछ इलाज की दीजिए। तो वो कहता है कि मैं दोनों की बात सुनता रहा, फिर मैंने उनको आराम से कहा, एक बात तो बताइए, आपके घर में तो कोई ऐसा नहीं करता? तो कहा, उसके बाद दोनों का सर झुका हुआ था, यानी वो मियां बीवी अपने बच्चे के सामने लड़ते झगड़ते थे, तो बच्चे ने वही सीख लिया। जब उस बच्चे ने ये देखा ही है तो क्या वो योग नहीं करेगा? करेगा ना। आज कितने ही बच्चों की जिंदगियां जीरन हो गई, आज भी ये बात है कि क्राइम रेट्स, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो मुजरिम बनते हैं उनके पीछे माँ बाप का हाथ है। इंग्लिश में तो आप कभी उसको बेबी कहेंगे, फिर जरा सा बड़ा बच्चा होगा इन्फेंट कहेंगे, फिर उससे बड़ा हो जाएगा उसको चाइल्ड कह देंगे, फिर उससे बड़ा होगा तब उसको बॉय कह देंगे, फिर अर्ली टीन कह देंगे, फिर टीन। अरबी जुबान में अल्लाह ने एक ही बात की, पैदा होने से लेकर बलूगत तक, लड़का है या लड़की, अल्लाह ताला उसको तिफल कहते हैं। इत्फाल उसकी जमा होती है। कुछ मुल्कों में 16 साल की उम्र, कुछ में 18 साल की उम्र के बाद बच्चे को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये बड़ा हो गया। इस्लाम जो है वो इस बात पे जोर देता है कि बलूगत से पहले की उम्र बहुत हसास होती है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और बच्चा अपने माँ बाप के हर रवैये को देखता है। जो बच्चे अपने घर के अंदर हर वक्त लड़ाई झगड़ा तनाव और ऐसे माहौल में को देखते हैं तो उनकी शख्सियत क्रश हो जाती है। और एक दफा बच्चे की बचपन में पर्सनैलिटी क्रश हो गई, आप फिर बड़े होकर जो मर्जी कर लें वो नॉर्मल नहीं होंगे। इवन मैंने देखा है कि कुछ शादी के बाद कुछ मर्द सही हस्बैंड साबित नहीं होते, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बाद वो फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं, बाद वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाते अपने स्पाउस को। आप जाकर उसकी तह में देखिए तो वो किसी ब्रोकन फैमिली का बच्चा होता है, या माँ बाप की तलाक हो गई, या घर के अंदर कुछ और था, ये था वो था। और खबरें ऐसी आती रहती हैं कि कैसे माँ बाप की लड़ाई ने बच्चों को सड़क पे फेंकवा दिया और छोटी छोटी जानें सर्द रात में भूख और प्यास में गिरती पड़ती रहीं, और फिर कितने दिन के बाद उनको खाना मिला जब किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने उनको वहां से उठाकर अपने कब्जे में लिया। हजारों की तादाद में ऐसे वाकयात हो रहे हैं हर रोज, लड़ाई झगड़े ये कुछ। बस दफा मियाँ बीबी का झगड़ा होता है, बीबी मैके चली जाती है, ससुराल में बच्चे चचा पुप्पो दादी के पास रहते हैं, बच्चे अपसेट होते हैं। शादी के बाद मियाँ बीबी को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। बच्चे का पैदा हो जाना अल्लाह की तरफ से एक ऐलान है कि घर नहीं टूटेगा, संजीदा हो जाओ। अब एक बच्चा है तुम्हारे सामने, तुम्हें देख रहा है, आप अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी दीजिए, घर का माहौल ठीक रखिए ताकि आपके बच्चे ठीक हो। नॉर्मल नस्लें पैदा करने के लिए ऐसा है। अगर आपके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा ही होगा तो घर तो जहन्नुम है, तो जहन्नुम में से तो अंगारे ही निकलते हैं, फूल नहीं निकलते। तो ये मासूम फूल इनको अंगारे ना बनने दीजिए, चीख कर मत बात कीजिए। मासूम बच्चों को बहुत ऊंची आवाज सुनकर वैसे ही डर आने लगता है, सहम जाते हैं, अंदर से टूट फूट जाते हैं, और फिर उनके अंदर जो माहौल का असर होता है, आप पढ़िए, ऐसी पूरी पूरी रिसर्चेस मौजूद हैं, वो स्टडी करते हैं, वो कहते हैं ऐसे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिद्दी, बदतमीज, और नींद की खराबी, सेहत बिगड़ जाती है, हर वक्त सर और पेट में दर्द रहता है, अक्सर बीमार रहते हैं, और अपने भाई बहनों से यानी सिबलिंग्स के साथ उनका रिलेशनशिप ही नहीं बनता। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, मियाँ बीवी की नहीं बनी ना तो उसके बाद आज तक भाई बहनों की भी नहीं बनी, उनको मोहब्बत मिली कोई नहीं तो आज दे ही नहीं पाते। जिस बैग में आपने सेलफोन डाला ही नहीं तो वहां से निकालेंगे कैसे? बच्चों के छोटे छोटे ब्रेन्स में अगर आपने मोहब्बत डाली नहीं है तो कल निकलेगी कहाँ से? तो लिहाजा हम सब का ये फर्ज है, ये सरासर इस्लाम है कि हम अपने घरों का माहौल अच्छा रखें, खासतौर पर जब आप लोग कुरान से जुड़ते हैं। माशाल्लाह आप में से अक्सर यहाँ स्टूडेंट्स होंगे और मुझे अंदाजा भी हुआ कि आपके यहाँ कुछ कुरान के मदरसे भी हैं, बड़ी खुशी की बात है, कदर कीजिए इन नेमतों की, लेकिन अपने बच्चों के साथ बेहतरीन माहौल रखिए। मियाँ और बीवी दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, फिर वो मुख्तलिफ जेंडर कैसे होते? इख्तलाफ फितरी बात है, बर्दाश्त कीजिए। अच्छी बीवियां अपने शौहरों को संभाल लेती हैं, अच्छे मर्द अपने गुस्से पे काबू पा लेते हैं, वो गालियां नहीं देते। सब्र कीजिए, शुक्र कीजिए, आप हर चीज इस दुनिया में नहीं पाएंगी। और मैं यहाँ उन माओं को भी जरूर कहूंगी जिनके अभी बच्चियों की शादियां नहीं हुई और जिनके बेटों की भी नहीं हुई, अल्लाह के लिए रिश्ते ढूंढते वक्त अपनी बेटियों को कुर्बानी का बकरा मत बनाएं, और अपने बेटों को भी बेचारों को मत जिबा कीजिए। दीन की बुनियाद पे रिश्ते होंगे, दोनों तरफ तरबियत भी अच्छी होगी, लड़के को आप लड़का बनाकर गैरत के साथ पालिए, बहादुर बनाइए, कवाम बनाइए, कल आने वाली औरत का वो बोझ उठा सके, और बेटी को सब्र सिखाइए, शुक्र सिखाइए, कनात सिखाइए, कदरदानी सिखाइए। औरत का तो काम ही सुकून देना, बार बार कुरान क्या कहते ली यस कुनाई लईहा, औरत तो सुकून बख्शने वाली चीज है। मैं मानती हूं कि मर्द का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन शुक्र है कि मैं भी औरत हूं। फिर भी मैं ये कहूंगी, घर को जन्नत बनाने में या जहन्नम बनाने में औरत का बहुत किरदार है, तो अपने घर को पुरसकून बनाइए। अल्लाह ने आपको दीन दिया, आप कहते हैं शौहर को दीन नहीं दिया, अब तो मुझे जहर लगते हैं, अब तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, अब तो मैं बोलती हूँ तड़क तड़क बोलती हूँ, बल्कि नमाज ना पढ़े फजर की और असर की तो मैं कहती हूँ आप मुनाफिक हैं, کیونکہ حدیث پڑھ لی کہ منافق پہ فجر اور عصر کی نماز بھاری ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا آپ کو ایسے دین مل سکتا ہے؟ کوئی ڈنڈے کے طور پہ تھپڑ مار مار کے قرآن کا ایک ایک سپارہ ہے اس کا ترجمہ یاد کرا سکتا ہے؟ دین ایسے نہیں آتا. آپ انجیکشن بھی لگواتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہلکے ہاتھ والے سے ڈلواؤ تاکہ بازو نہ سوج جائے. دین بھی آپ نے کسی کو دینا ہے تو اچھے طریقے سے دیں. بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالتے ڈالتے ان کو نماز سے دور کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال کا بچہ نماز کا اثر ہوتا ہے اس پہ, 10 سال تک نماز پڑھے گا. اب آپ امیجن کیجئے ایک بچہ 10 سال کا ہونے تک دن میں 5 دفعہ ماں اور باپ کو نماز پڑھتا دیکھ چکے. کم و بیش ایک بچہ 10 سال کی عمر تک 5000 مرتبہ نماز پڑھتا دیکھ چکا ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا سلو کمار آئی تمونی اسلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. اللہ کے نبی نے اپنی طرف اشارہ دیا نا, بچہ اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتا دیکھتا. آپ 100 دفعہ بھی کہیں نا بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو تو وہ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو ان کو کہا جائے کہ کرو. بچے کیا کرتے ہیں؟ جو وہ دیکھتے ہیں. ماں باپ نمازی ہوں گے بچوں کو کہنا بھی نہیں پڑے گا. آپ دیکھیے کہ پہلے دور میں بچوں کو نمازی بنانے میں اتنی مشقت نہیں ہوتی تھی کیونکہ پریکٹیکل گھر میں موجود تھا. نانیاں دادیاں تہجد پہ اٹھ جاتی تھی. مجھے لگتا ہے آپ کے شہر میں ابھی بھی ایسا ہی ہے, لیکن میں آپ کو سچ کہوں کہ آپ کے شہر کے ساتھ میری بہت خوبصورت یادیں ہیں بچپن کی. مان سہرا, آج میں نے اس کا مطلب پوچھ کے جانا ہے. سہرا لفظ الگ بھی سمجھ آتا ہے, مان بھی سمجھ آتا ہے. یہ مان سہرا کیا ہے کسی کو پتا ہے؟ ویسے پھر پوچھئے گا مطلب کیا ہے اس کا, کسی کے نام پہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہاڑ ہیں, خاموشی ہے, سادگی ہے. میں تو یہاں اور ہی کچھ سوچ کے آئی تھی, کچے گھر ہوں گے, حویلیوں میں رہیں گے اور سڑکیں بھی نہیں ہوں گی اور ہم پہاڑوں میں سے کود کود کر آگے جائیں گے. لیکن ماشاءاللہ یہ بہت اچھا صاف ستھرا الحمدللہ ایک آرگنائز سٹی دکھ رہا ہے مجھے, اور آپ سبھی بھی بہت ماشاءاللہ اچھے ساتھی مجھے دکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت چاہتے ہیں تو اس کا ایک سمپل سا علاج اپنی اچھی تربیت کر لیں. اور ایک جملہ آپ بھی نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں, ہمارے پاس ایک سیریز ہے پیرنٹنگ اے ٹو زی, تو اس میں ایک پورا سیشن تھا کہ اف یور کڈس ڈونٹ لسن ٹو یو, اگر آپ کے بچے آپ کو نہیں سنتے تو گھبرائیے نا. کیونکہ اکثر ماں باپ کہتے ہیں نا میرے بچے میری سنتے نہیں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ڈونٹ وری, کیونکہ وہ دیکھتے ضرور ہیں. آپ کہنے سے زیادہ اچھے کام کرنے شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے بہترین طریقے سے بیہیو کریں گے. اب یہ تو وہ باتیں ہیں جو بچوں سے متعلق ہیں, اس پہ بہت کچھ ہے. آپ ایپ کے اوپر سیم نام پہ نور القرآن کے نام پہ یو کے ساتھ ایپ بھی ہے, اس میں 1000s لیکچرز ہیں. ویب سائٹ کچھ ڈیولپ ہو بھی رہی ہے, پہلے سے بھی موجود ہے الحمدللہ, اس میں 1000s ہیں. بچوں کے تربیت کے ٹاپک پہ جا کر آپ بہت کچھ سیکھیں گے سنیں گے. اس وقت آج میرا بہت دل ہے کہ میں تھوڑی سی بات کروں استاد کی عظمت پہ. ہمارے ان پیارے ساتھیوں نے فلائر جو یہاں بانٹا ہے وہ تو عظمت استاد کا بانٹا ہے نا, میری نظر سے گزرا تھا. ہم نے اپنے پلیٹ فارم پہ جو بانٹا وہ بچوں کی تربیت کا, ہم اور ہماری اولادیں, تو میں نے راستے میں سوچا کوئی بات نہیں دونوں کی صلح کرا دیتے ہیں. تو ماں باپ کا اثر آپ سب کو پتا ہے. اگر اس پہ آپ مزید سننا بولنا چاہیں تو آپ کو لنکس بعد میں دیے جا سکتے ہیں. بچوں کی تربیت کے پورے گروپس ہوتے ہیں اور یہ کام تو کرتے ہی رہنا ہے انشاءاللہ, لیکن تھوڑی سی بات کریں گے استاد پہ. استاد کیا ہے؟ آپ دیکھیے پہلے تصور میں اپنے کسی بھی استاد کو لے کر آئے اور سوچئے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے. آپ بچپن کی اپنی وہ استادی صاحبہ جنہوں نے آپ کو پہلا قاعدہ پڑھایا تھا اس کو ذہن میں لے آئے, یا آپ اسکول میں گئے کچی پکی پہلی دوسری تیسری 2+2=4, استاد استاد ہوتا ہے. یہ مت سوچئے کہ صرف دین سکھانے والا استاد قابل قدر ہے. اگر میری اردو کی ٹیچر نے مجھے اردو نہ سکھائی ہوتی تو میں قرآن کا اردو میں ترجمہ کیسے پڑھتی, اور میری میتھ کی ٹیچر نے اگر مجھے 2+2 اور 2+2 اور 2+3 نہ سکھایا ہوتا تو میں وراثت کے مسائل کیسے سمجھتی اور سمجھاتی. استاد بہت قیمتی چیز ہے. آپ یہ لکھ سکتے ہیں اگر اپنے دل کی تختی پہ لکھنا چاہیں کہ جسمانی صحت کی ذمہ داری اگر گھر کی ہے تو ذہنی صحت کی ذمہ داری کول اور خاص طور پہ استاد کی ہے. کسی نے کہا کہ ماں باپ آسمان سے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور استاد زمین سے اوپر لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. استادوں کی عظمت کو تو سلام کرنے کو دل کرتا ہے. اللہ نے کیا خوبصورت دین دیا ہمیں جس کا ایک لفظ ایک جملہ ہم ہمیشہ ہی سنتے آ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں, با ادب. بولیے, با نصیب. بے ادب, بے نصیب. ہمارے آئمہ کرام اور اسلاف کہا کرتے تھے کہ علم لینے میں اتنی مشقت نہیں ہوئی اپنے استاد سے, لیکن ادب سیکھنے میں مدتیں گزر گئیں. اسی طرح ایک امام کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے استاد سے 30 بار قرآن سیکھا, ایک بار علم لینے کے لیے اور باقی دفعہ ادب لینے کے لیے. ہماری روایت تھی کہ ہمارا استاد کے ساتھ بڑا پیارا تعلق تھا. وہ بھی آپ نے واقعہ سنا ہوا, حضرت جابر کہاں مدینہ سے نکل کر ایک اونٹ خرید کر شام جاتے ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نوک نہیں کرتے کہ میں تو حدیث لینے آیا ہوں, یہ میرے استاد ہوں گے تو میں ان کو تنگ کیوں کروں. یاد ہے واقعہ آپ کو؟ خود جب وہ اپنی کسی ضرورت سے گھر سے نکلے تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں جابر ہوں اور میں آپ سے ایک حدیث سننے آیا ہوں جو مجھے پتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی سے سنی ہے. پتا ان کو بھی تھی لیکن اپنی سند قریب کی کرنا چاہتے تھے, لنک ہو جائے, لنکڈ ان. تو پھر انہوں نے حدیث بھی بڑی پیاری سنائی کہ جو علم کے رستے پہ چلے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا. تو استاد اگر بچے کو چاہے تو ایک ایسا ناقابل شکست انسان بنا سکتا ہے کہ جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو تو سونا بن جائے. اور اگر استاد بچے کو مطمئن کر دے تو بچے کے اوپر ایون گھر کے ماحول کا جتنا بھی نیگیٹو اثر ہوگا وہ استاد کی کوششوں سے ختم ہو جائے گا. آپ بھی کسی نہ کسی جگہ استاد ہیں, مانیے. کیسے؟ ہر ماں ایک استاد ہے. بچہ کس سے زیادہ سیکھتا ہے؟ ماں سے سیکھتا. ہمارے اسلاف کی مائیں ہی اپنے بچوں کو قرآن تو پڑھا لیا کرتی تھی. آج کی ماں تو بڑی محنت کرتی ہے بیچاری, لیکن حقیقت یہ ہے کہ استاد کا رویہ اگر ایک ہمدرد کا, ایک گائیڈ کا اور ایک مددگار کا ہوگا نا تو بچہ سیکھنے کے عمل کو خوشی خوشی کر گزرے گا. اور اگر استاد غصے والا ہو, سختی والا ہو تو بچے ڈریں گے, سوال ہی نہیں پوچھیں گے, ڈرے سہمے رہیں گے تو بچے کو فائدہ نہیں ہوگا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ استاد علم نہیں دیتا, علم کی بھوک دیتا, علم کا شوق دیتا, علم کی طلب دیتا. کتاب علم دیتی ہے, استاد موٹیویشن دیتا. اور کسی نے بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ استاد کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس جا کر اپنا علم تھوڑا لگے. استاد ایک ایسا کنواں ہے کہ جس کے پاس جب بھی آپ جائیں گے نیچے سے اور میٹھا پانی ملے گا. تو اپنے استادوں کی تو قدر کریے, لیکن اگر آپ کہیں استاد ہیں, ہو سکتا ہے آپ میں سے یہاں کچھ لوگ ٹیچرز ہوں, کسی یہاں کے لوکل سکول میں پڑھاتی ہوں, کسی مدرسے میں پڑھاتی ہوں, یقین کریں سر سجدے میں رکھیں. استاد ہونا اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے, کیونکہ الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. قرآن پاک تو سب سے پہلے اللہ نے خود سکھایا. تو اگر آپ کہیں بھی استاد ہیں تو پہلے تو اس پہ کہیے الحمدللہ. افسوس کی بات بتاؤں, ہمارے ملک میں استاد کی وہ قدر نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جو مجھے خود بھی کسی نے جرمنی میں سنایا. جرمن قوم پڑھی لکھی قوم ہے. آج بھی میں خود جاتی ہوں, جب بھی دیکھتی ہوں, جب لوگ سیل فون سے کھیلتے ہیں نا رستوں میں, ڈرائیوروں کے ہاتھ میں بھی فونز ہیں, آج بھی ان کی ٹرینز اور ان کی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ بک پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ وہاں کے ڈاکٹرز اور جو بڑے ہائی فائی قسم کے لوگ تھے نا, انہوں نے گورنمنٹ سے ایک مطالبہ کیا اور کیس کر دیا کہ ہماری پہ ڈاکٹرز کی, لائرز کی اور جو بھی ہائی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی پے اور استادوں کی پے ایک برابر ہے, ہماری پے زیادہ کیجیے. جیسے عموماً ہوتا ہے امریکہ میں سب سے زیادہ پے جو ہے وہ ڈاکٹرز کو ہی ملتی ہے یا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے, معروف بات ہے. خیر آپ کو تھا کہ کورٹ میں کیس چلا اور کون جیتا؟ وہ مقدمہ کرنے والے ہار گئے. جواب کیا تھا جو جج صاحب تھے؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ, اب غور سے سنیے گا, اور اگر آپ استاد ہیں نا تو اس بعد میں شکر کا سجدہ کیجیے گا. کہنے لگے کہ اس سے زیادہ تمہاری پے کیسے ہو سکتی ہے جس نے تمہیں ڈاکٹر بنایا, جس نے تمہیں انجینئر بنایا, جس نے تمہیں لائر بنایا. تو استادوں کے بہت سارے احسانات ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو اب یہ بات ہوگی نا کہ ہم اپنے استادوں کی قدر کریں, ये भी इस वक्त मेरा मौजू नहीं है, ये तो हमें खुद ही करना चाहिए। लेकिन मैं एज अ टीचर, अगर आप भी मेरी तरह एक टीचर हैं, तो मैं आपको चंद छोटे छोटे मशवरे देना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज, बीइंग अ टीचर, अपने पास आने वाले के शुक्रगुजार हो जाइए। बी थैंकफुल टू योर स्टूडेंट्स। यकीन करें, ये इतना बड़ा आपके ऊपर एहसान है कि कोई आपके पास आकर बैठ जाता है और आप पे अंधा एतमाद करता है, आप उसको जो मर्जी सिखाएं सीख लेगा। उस्ताद गालियां सिखा दे, बच्चा गाली सीख लेगा। तो अगर आप उस्ताद हैं तो शुक्रगुजार बने, कभी ना चिढ़े। कभी रात में कोई कह दे कुछ, कोई दिन में कह दे, देखिए अपने बच्चे कितना सताते हैं, तो अगर आपके स्टूडेंट आपको सताएं। अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, प्यार कीजिए, लव योर स्टूडेंट्स। कभी उनसे खिंचे खिंचे ना रहे, कभी उनके साथ लिए दिए ना रहे। अदब सिखाने के लिए आपको फासला तो रखना पड़ेगा, वरना तो उनकी तरबियत ही नहीं होगी। अगली बात, आप कोई भी टीचर हैं, साइंस की टीचर हैं, कुरान की टीचर हैं, मस्जिद मदरसे में हैं, जहां भी है, जो भी पढ़ाएं उससे उनको अल्लाह से जोड़ दें। इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुक अल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लम अल इंसान मा लम यालम। आप साइंस की टीचर होंगी, जब भी साइंस पढ़ाएं तो बाद में अपने स्टूडेंट्स को बताइए, देखिए ये सूरज कितना बड़ा है, जिसने इसको बनाया वो कितना बड़ा होगा, ये चांद कितना चमकता है, जिस रब ने इसको बनाया वो कितना जमील होगा। यानी हर मजमून के तहत अपने स्टूडेंट को अल्लाह से जोड़ दीजिए। असल है भी ये, आज के दौर में जरूरत इस बात की है। देखिए हम जैसे शुरू में सिस्टर ने आपको काफी इंफॉर्मेशन दी ना कि हम नूरुल कुरान के थ्रू डिफरेंट कोर्सेज कराते हैं, यकीनन वो आपका एक वक्त अच्छा यूज करना चाहती थी, दूसरा आपसे मोहब्बत करती हैं कि आप दीन सीखें। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत जिस चीज की है वो क्या है, कि हम दीन और दुनिया की तालीम एक छत के नीचे रखें। इस पे भी पिछले दिनों एक लेक्चर हुआ है, अगर याद हो किसी को तो नाम बोल दे, लाहौर से हुआ था। असल ड्रॉबैक आज ये है, हमारे बच्चे दुनियावी तालीम के लिए 10-12 घंटे दिन के, यानी स्कूल जाना फिर आके भी होमवर्क करना, हफ्ते के 40 से 50 घंटे बनते हैं, और दीन के लिए शायद 1 घंटा भी मौलवी साहब के पास ना बैठे। तो हमारे बच्चों के जहनों में आ गया कि दीन तो कमजोर सी बेकार सी चीज है, गरीब मस्कीन, दीन क्या है गरीब, मदरसा टूटी हुई कुर्सियां, दीन का टीचर स्मेल आ रही, उसका एक खास बस रूप है, मौलवी साहब मैं तो ऐसे हैं, पढ़ाने वाली है तो ऐसे। हमने क्यों दीन को अछूत बनाया? अल्लाह ने जो हलाल किया उसको हराम कर दिया। हमने दीन को आज इतना गरीब दिखाया कि लोग अपने घर की टूटी हुई कुर्सी जाके वहां छोड़ाएंगे, जेब में जितने पैसे होंगे उसमें से वो रेस गाड़ी उठाकर जाकर मस्जिद या किसी मदरसे के चंदा बॉक्स में डाल देंगे। भाई क्यों? आपके घर के बाहर बेल बजे और एक बड़ी मॉड स्कॉट औरत ये कहकर तारुफ कराए कि मैं आपके बच्चे के स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, और जो बच्चा स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है, कहाँ बिठाएंगे उसको, क्या आप उसकी इज्जत करेंगे? और अगर दूसरी बेल पे एक बुरके में लिपटी बड़ी साफ सुथरी बड़ी डिसेंट सी संजीदा सी औरत हो, तो पता चले कौन है, ये बच्चे को सुबह पढ़ाने आई हैं, तो उनको कहाँ बिठाते हैं आप, उनकी कितनी को इज्जत करते हैं? याद रखिए ये बहुत बड़ा जुल्म है। अपने बच्चों को दिखाइए और बताइए, और बच्चों के लिए वो टीचर्स ढूंढिए कि जिनको देखकर दीन भी इज्जत वाला लगे। इज्जतदार लोग दीन सिखाते हैं, लोगों को दीन इज्जत वाला लगता है। प्रोटोकॉल के साथ दीन को लीजिए। अगर आप दीन के उस्ताद हैं कभी झूठ ना बोले, अगर आप दीन के उस्ताद हैं कभी गंदे ना दिखिए, कभी लोगों के साथ बदतमीजी ना कीजिए, मत सख्ती कीजिए। ये क्या जुमला है कि डंडे के बाहर हिफ्स नहीं होता? और अगर आप सब जो यहाँ बैठी हैं माए, मुझे यकीन है आपके बच्चों को कोई और पढ़ा रहा है, तो एक नुक्ता अपने लिए भी नोट कीजिए कि अपने बच्चों की टीचर्स की कदर कीजिए। अगर आपका कोई इदारा है, इंस्टीट्यूट है, और वहाँ टीचर्स टीच करती हैं, आप उनकी कदर कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनको बिल्कुल आसूदा रखिए, पूरे सुकून के साथ वो इस काम को करें। क्योंकि ड्राइविंग करने वाले को अगर जरा सा डिस्ट्रैक्शन हो तो हादसा हो जाता है। उस्ताद अगर अपनी किसी मुश्किल परेशानी में हो तो वो कभी भी उस तरह से ये काम कर नहीं पाता। तो उस्ताद को असल में बोल में, चाल में, ढाल में, रंग में, ढंग में, एक एक चीज में खूबसूरत नमूना बनकर दिखना चाहिए, ताकि बच्चे कल वैसे ही बने। बचपन में इंसान अपने उस्तादों को बहुत कॉपी करता है, आप भी करते थे, सब करते थे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे आपके अपनी जिंदगी में खूबसूरती आएगी। جزاکم اللہ خیر. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. سبحانك.